Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Jaya Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama
Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol
हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततोजये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमोऽं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वागीशा यस्य वदने लक्ष लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवितं तं नरसिंहाहं भजे हरे कृष्ण। तो आप सभी कृष्ण कथा अनुरागी वैष्णव एवं भक्तिमती वैष्णवी माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री राधा गिरधारी जी की महती कृपा है कि मानव जीवन का सर्वोच्च फल सार जो सत्संग है हरि कथा श्रवणम है वे प्रभुपाद जी के और वैष्णवों के सानिध्य में हमें प्राप्त हो रहा है। वैसे भगवान की कथा भगवान का नाम भगवान के भक्त भगवान का अर्च विग्रह और विशेषकर भगवान का यह स्वरूप भागवत ये सब एक तत्व है। और कलयुग के विशेष नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज ने जो बताई और उसमें भी जो प्रथम है श्रवणम कीर्तनम जिस पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बल दिया श्रवण कीर्तन जले करये सिंचन गुरु वैष्णव कृपा से हमें ये भक्ति लता बीज जो मिला है और उस लता में कृष्ण प्रेम के फल पके उसके लिए उस वैष्णव माली को चाहिए कि उस लता का पोषण करे और वो होता है जल आदि से और वो जल है श्रवणम भगवान की कथा का श्रवणम। तो आप सभी वैष्णव भगवत कथा श्रवण के लिए पधारे हैं विराजे हैं तो आप सभी के चरणों में दंडवत करते हुए आइए श्रीमद् भागवत जो प्रेम शास्त्र है, भक्ति रस सिंधु है, इसमें भगवान के और भगवान के प्यारे पवित्र भक्तों के चरित्र उसको सुने, ताकि हमें भी भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भाव बढ़े। विशेषकर हमारे मंदिर में जो नित्यम भागवत सेवया है, उसके अंतर्गत कृष्ण जन्म कथन चल रहा है, दसम स्कंध, जिसको गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, चौथे अध्याय का नौवां श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में, प्राय आप सबको कंठस्थ होगा, बार बार इसको आप सुने होंगे। उस पर थोड़ा विचार करें, भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य शब्द का क्या अर्थ है? कई लोगों ने कई प्रकार से बताया है, लेकिन सरल भाषा में बताए तो दिव्य शब्द का अर्थ होता है अलौकिक, जो लोक में जीव कर्मानुबंधन में जन्म लेते हैं वैसे नहीं, अलौकिक, लोकों से परे, सरल। या फिर इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ के सुने तो प्राय सबके जन्म जो है वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत होते हैं, रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण, जिसको गीता में भगवान ने थोड़ा विस्तार करके बताया है कि सत्वगुण में है तो उद्धव जन्म होगा, तमोगुण में अध नीचे योनियों में जन्म होगा, ऐसे कुछ सार बताया। लेकिन भगवान का जन्म प्राकृत अर्थात प्रकृति के गुणों के अंतर्गत नहीं है, अप्राकृत है अर्थात प्रकृति गुणों से परे स्वतंत्र जन्म है, इसलिए उनको दिव्य कहा गया है। दिव्य शब्द का दो अर्थ, अलौकिक और दूसरा प्रकृति के गुणों से परे स्वतंत्र रूप से। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के स्वामी है। कृष्ण मायापति या मायाधीश है और हम सब माया के अधीन है। तो जीव और भगवान में ये भेद है कि हम माया के अधीन है और वो मायाधीपति है, ये फर्क है। हम माया के अधीन हो जाते हैं लेकिन भगवान माया के स्वामी है और उनकी शरण में जाने से हम माया से मुक्त हो जाते हैं। ये गीता में भगवान ने उपाय बताया। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म किस प्रकार दिव्य है, कैसे अलौकिक है, उसको समझने के लिए भगवान के जन्म की कथा, उस भगवान का साक्षात चरणामृत ब्रह्म नदी श्री गंगा के घाट पर, गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं महाराज परीक्षित, और उसमें भी सुबह परम पूज्य श्री लाल गोविंद प्रभु जी चर्चा सुना रहे थे कि भगवान विभु है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, योगेश्वर है, लेकिन वसुदेव और देवकी के प्रेम के वशीभूत होकर क्या बन गए? बालक। ब्रह्म क्या बन गया? बालक। जिस कृष्ण को गोपाल तापनी आदि उपनिषद परब्रह्म कहता है, अर्जुन गीता में कहते परब्रह्म परम धाम, वे परमात्मा, वे परमेश्वर, वे परब्रह्म, देव की और वसुदेव की भक्ति के कारण क्या बन गए? बालक। बालक बन गए। कैसे बालक थे? अद्भुत। जो सामान्य बालक जन्म लेते हैं मनुष्यों के, ऐसे नहीं। और वसुदेव जी अपनी आंखों से उस दिव्य सच्चिदानंद श्री विग्रह कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान कितने सुंदर है, कितने दिव्य इंद्रिय और उनके दिव्य सच्चिदानंद श्री विग्रह है। और इस कथा को सुनते हुए व्यास जी ने लिखा, आचार्यों ने उसका मनन चिंतन किया और इसका श्रवण कीर्तन करके जन्म बंधन कर्म बंधन से मुक्त हो गए। फिर भी कलयुग का पाखंड देखो, दुर्भाग्य देखो, कि आज भी कुछ लोगों के लिए वही भगवान क्या निराकार। उनका अब भगवान प्रकट हुए, सबसे सुंदर है, और एक बार प्रकट नहीं हुए, अभी तो कृष्ण रूप में हुए लेकिन कभी राम भी बने हैं, नरसिंह बने, कितने रूप उन्होंने लिए, और आज भी मूर्खों के लिए भगवान का कोई रूप नहीं। जो ऐसा कहते उनके दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्र संत वैष्णव स्पष्ट कहते हैं। और जो जो उपासना है, भगवान ने कितनी बार अपने रूप को प्रकट किया इस प्रपंच जगत में सच्चिदानंद स्वरूप को, लेकिन भक्त्या माम अभिजाना थी। भगवान गीता में कहे हैं, जब मैं मनुष्य जन्म लेकर लीला करता हूं तो हे अर्जुन मूढ़ा नराधमा ये मुझे नहीं समझ पाते। मानसम देहम आत्म उसका आधार लेके प्रकट होता हूं तो मूढ़ोयम ना अभिजाना थी, मूड मुझे नहीं जानते, तो फिर आपको कौन जानते हैं? भक्त्या माम अभिजाना थी, भक्त लोग मुझे जानते हैं। देखो अहंकारी असुर और मूर्खों के लिए भगवान कितना हुआ ऐश्वर्य दिखाए वो मानते ही नहीं, लेकिन भक्त के सामने भगवान सरल व्यवहार करे तो भी भक्त जान लेता है कि तुम ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, भक्त जान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कितना छुपाया लेकिन रूप गोस्वामी जान गए कृष्णाय आप कृष्ण हो। और वही कृष्ण शिशुपाल दंत वक्र ये सड़े बड़े असुर के सामने इतनी लीला कर रहे लेकिन वो लोग मनुष्य ही मान गए, साधारण मान गए। इसीलिए कहा गया ब्रह्म संहिता में वेदेशु अदुर्लभ, वेदेशु दुर्लभ, बड़े बड़े वेद पढ़ने के बाद भी भगवान को नहीं जाना जाता, तो फिर भगवान को कब और कैसे जाना जाता है? भगवान की भक्ति करके, भगवान जिसको जनाना चाहे जिसके ऊपर कृपा करे वही जान पाता है। ईश्वर कृपा लेश जहारे चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ईश्वर कृपा लेश जहारे ईश्वर तत्व से जानी बारे पारे। भगवान का जिस पर कृपा हो जाए अनुग्रह हो जाए वही भगवान को जान पाता है। इस बात को ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में कहा है, चारों मुखों में चारे वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया, सृष्टि का आदि सर्जक प्रथम इंजीनियर जिसने विसर्ग की सृष्टि की वे ब्रह्मा भी चक्कर में आ गए, कृष्ण की लीला में उसको मोह हो गया, आप सबने वो लीला सुनी है। और उसके बाद उसको होश आया तो उन्होंने प्रार्थना की है और उस प्रार्थना में बहुत सुंदर सुंदर भाव है, उसमें एक श्लोक में वो कहते हैं था पिते दे वदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि। हे देव ते प्रसाद अनुग्रह लेश आपकी कृपा प्रसादी जिसको मिल जाए, जानाति तत्वम भगवन महिमनो, वे आपके परम तत्व को जान पाता है। इसलिए गीता में भगवान ने इंगित किया कश्चिन माम वेति तत्वतम, हजारों हजारों मनुष्यों में योगियों के साथ कोई कोई एक मुझे जान पाए, वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी जिस पर कृपा हो जाए वे आपके तत्व को जाने। काले न चिरन विचिन्वन, अगर आपकी कृपा न हो, आपके भक्तों की कृपा न हो, वो कितना हूं तप करे कितना हूं वेदाध्ययन करे आप पकड़ में समझ में आते नहीं है, क्योंकि वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी, क्योंकि आप तो भक्तों के द्वारा ग्रहण भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं। इसीलिए भगवान के जन्म का रहस्य अगर वेदों से वैष्णवों से तत्व से जान लिया जाए तो कृष्ण ने सरल कह दिया त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते, यही गीता है। कोई मेरे तत्व केवल जान ले उसके बाद कुछ करे ये नहीं कहा, केवल मैं कैसे जन्म लेता हूं उसको तत्व से तत्वदर्शी गुरुजनों से वेदों से अगर जान ले पुनर्जन्म न विद्यते। इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जान लेने से मुक्ति हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जान लेने के बाद वो केवल उसी से प्रेम करेगा और प्रेम करेगा उसका भजन करेगा, उसको नहीं जानता इसलिए संसार में फंसा हुआ है। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, माया से वशीभूत अविद्या के कारण जीव अपने स्वरूप को अपने स्वामी को भूल चुका है और कर्म पे कर्म बंधन में फंस रहा है। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने जीवे रस कृपा ये कृष्ण कैला वेद पुराण, जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान ने वेद और पुराणों की रचना की ताकि उसके द्वारा हम हमारे स्वरूप को समझे, हमारे वास्तविक संबंधी हमारे स्वामी को समझे और उसको जान लेंगे तो उन्हीं का भजन करेंगे। जानत तुम ही हो जाएंगे। अगर तुमको जान लेगा प्रभु तो तुम्हारा ही हो जाएगा। तुमको नहीं जाना है इसलिए वो संसार का बना हुआ है अविद्या के कारण। आपको जान लेने के बाद वो तो आपका हो जाएगा। जाते तत्व का संसारम शंकराचार्य ने गाया है। वो कहते हैं वो भज गोविंद स्तोत्र है ना, चरपट पंजरी का स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध है वैरागी जनों में। उसमें वो कहते हैं वयसि गए कह काम विकारम शुष्क तीरे कसासारम ज्ञाते तत्व क संसारम नसि चिंतय बारम बारम। अरे भाई जी उम्र बीत जाए ना तो काम ठंडा हो जाता है और वयसि गए क सासारम, सरोवर के तट पर सासार एक पक्षी होता है जो बगुला के आकार का, लेकिन वो तीर पानी से सूख जाए तो फिर वो पंछी भी ऐसे ही तत्व का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए फिर संसार रहता ही नहीं। ज्ञाते तत्व का संसार, वो तो तत्व नहीं जानता इसलिए संसार में फंसा हुआ फंस रहा है। इसलिए तत्व को मतलब भगवान कह रहे हैं कि तत्व से जान लेगा वो मोक्ष को मुक्ति को पा लेगा, मुझे पा लेगा, मतलब मेरे तत्व को जान लेगा तो मुझे ही प्रेम करेगा, मेरा ही भजन करेगा और फिर मेरा भजन करेगा तो मुझे पा लेगा, क्योंकि मैं उसका उद्धार करने आऊंगा इस भव समुद्र से लेने के लिए। भवानी काम किरात पार समृद्धि संसार सागर बार सार बगुला भव बंधन से मैं उसको छुड़ाने के लिए आऊंगा अगर वो मेरी शरण में है मेरा भजन कर रहा है। तो इसीलिए भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, हमारी साधना और सेवा में उत्साह बढ़े, उसके लिए सत्संग श्रवण कीर्तन जले। महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि आप सुनोगे इन शास्त्रों को, भगवान की भक्तों की वाणी को। जैसे पौधा बीज डालने पर अगर उसको जल दिया जाए तो उसको पोषक वो बढ़ता है, ऐसे हमारी भक्ति लता श्रवण कीर्तन से बढ़ती है। इसीलिए विवेकी वैष्णव को चाहिए कि नित्यम भागवत सेविया, उसमें वो आलस न रखे। सबसे बड़ा धन यही है, प्राण वस्तु वैष्णव के लिए कोई है तो है हरि कथा, क्योंकि कृष्ण कृष्ण कथा कृष्ण नाम सब एक है और उसी का हमें सेवन करना है। आइए भागवत के उस पवित्र शब्द जो सुखदेव जी ने मुख से निकले हैं, जो एक अमृत औषधि एक संजीवनी है, और उसका श्रवण कीर्तन हमारे पाप पाप संताप को नष्ट करके हमें भक्ति प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसे भागवत के पवित्र शब्द उसको गाना सुनना समझना यही जीवन है जो बोर्ड पर लिखा है। अमद्भुतं बालकंबुज क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् त्रिवत्सलक्ष्म्यं गलशाभिकौस्तुभम् पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम् समद्भुतं बालकयंबुजक्षणम् चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम् त्रिवत्सलक्ष्म्यं गलशाभिकौस्तुभम् पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। वसुदेव ने देखा, अनुवाद प्रभुपाद जी का मैं पढ़ रहा हूं, जिनकी आंखें कमल जैसी थी, चारों हाथों में शंख चक्र गदा एवं कमल अर्थात पद्म चार आयुध धारण किए, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए हुए थे और उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह शोभायमान हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण का ये सौंदर्य विग्रह की चर्चा वेदों में, पुराणों में, संतों के मुखों में हरनिश चलती रहती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अपनी कलम चलाते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की है, बरहार समस्ताम बुद्ध सुंदरांग, भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा, अचित अर्थात श्याम, अम्बुद अर्थात बादल, ऐसे इनका आस्वादन सुबह भक्तों ने किया है, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो समय है और भगवत शब्द भागवत का कुछ आस्वादन कर रहे हैं। सांद्र पयोद सौभगम, नीचे से चालू करते हैं। सांद्र मतलब जिसमें जल भरा, जो चमकता हो, सांद्र का एक चमकीला भी होता है, द्रवीभूत हो, और पय माने जल, उदर, पयोद मतलब बादल को संस्कृत में पयोद कहते हैं, जिसमें जल भरा हो। सौभगम जिनके श्री अंग की वर्ण कांति कैसी है, जल भरे हुए बादल हो जाए, सांद्र पयोद सौभग। किसी को प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता में जो हम प्रतिदिन श्रृंगार में गाते हैं कि बरहार समसीता बुंद सुंदरांगम, अंगम जस्य अंगम, जिसका अंग शरीर इतना सुंदर है और कैसा सुंदर है, असित अम्बुद अर्थात असित मतलब श्याम काला, और अम्बुद भी बादल को कहते हैं, अम्बु माने जल और जल बरसाने वाला अर्थात बादल, जिसके श्री अंग बादल की तरह सुंदर है, और यहां पर भी जिनका शरीर की शोभा जल भरे हुए बादल जैसी है, ये भगवान के श्री विग्रह को घनश्याम के नाम से बहुत बुलाया जाता है। और बड़े बड़े भजनों में, संस्कृत के उच्च श्लोकों में इस बात को प्राय दोहराया गया है, आवृत्ति की गई है बार बार। और देखो इसकी चर्चा जब हम सुन ही रहे हैं तो मौसम के अनुकूल है, वर्षा ऋतु है, और अब जो आप बादल देख रहे हो ना वो जल से भरे हुए हैं। अब तक आज दिन पहले के जो बादल थे ना वो बलराम जी के कलर जैसे थे, शरद ऋतु में अर्थात जेठ महीने में, हमारे अंग्रेज के अनुसार मई महीने में जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, रुई के पहाड़ जैसे उज्जवल, श्वेत वर्ण के, जो हमारे दाऊ महाराज के शरीर जैसे। लेकिन सावन और भादो जब अषाढ़ प्रारंभ हो जाता है, प्रावृत ऋतु, उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। श्रावण और भाद्र ये दो वर्षा ऋतु मानी गई, लेकिन तीन ऋतु के अनुसार तो अषाढ़ से अश्विन तक चार महीने वर्षा ऋतु मान लिया जाता है, रेनी सीजन। और बड़ा उत्सव आता है अषाढ़ में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, अषाढ़ी द्वितीया, और उसके पहले पहले ही ये वर्षा प्रारंभ हो जाती है। बंबई में श्री गणेश पहले होता है वर्षा का, और वर्षा ऋतु का वर्णन भी भागवत में है। भागवत दशम स्कंध के बीसवें अध्याय को आप पढ़ेंगे, जिसमें सुखदेव जी ने गंगा तट पर वर्षा ऋतु में कृष्ण दाऊ ग्वाल बाल सखाओं के संग ब्रज में क्या लीला करते थे और कैसा सुंदर मनोहर रमणीय वातावरण निर्माण होता था, और उसके अंतर्गत हम लोगों के लिए क्या शिक्षा है, मैसेज है, उसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और उसके वर्णन में बताया गया है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो आकाश में काले घने मेघ बादल छा जाते हैं। प्रथम चिन्ह वर्षा ऋतु का कि बादल छा जाते। अच्छा, बादल जब छा जाते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? मयूरों को, और उसके बाद मनुष्यों में किसानों को, है ना, कि उसका कुछ फल खेती होगा। लेकिन पक्षियों में मयूरों को। सुखदेव जी याद करते हैं, जब जैसे वृंदावन में वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और बादल छाने लगे तो मेघागम उत्सवा हर्षता प्रत्यानंद शिखंडिनी दसवाध्याय बीसवा श्लोक दस बीस बीस आपके अध्ययन के लिए। मेघा आगम मतलब आप समझ पाता है गुजरा हिंदी में भी, ये बादल जब आगमन हो गए तो प्रत्यनंद मतलब आनंद में आ गए, प्रतिनंद उसके सामने, बादलों के सामने आनंद में आ गए। कौन? शिखंडी न, जिसके माथे पर शिखंडी मतलब कलगी, मोर के पक्षी को आप देखे होंगे उसके सिर पर कलगी होता है जिसको संस्कृत में शिखंड कहते हैं। ये खाने वाला शिखंड नहीं, तीन खंड ऐसे हम सुनते हैं ना, भूखंड त्रिखंड, ये अच्छे है लेकिन ये कलयुग में बड़ा चल रहा है वो है पाखंड, उनसे बचना चाहिए। त्रिखंड अच्छा है, भूखंड भी अच्छा है, लेकिन ये पाखंड, उसका वर्णन भी वर्षा ऋतु में है कि वर्षा ऋतु में बादल छाते हैं तो सबसे क्या होता है? सूर्य दिखता। ऐसे ही कलयुग में किसके बादल छाते हैं? पाखंड के बादल छाते हैं। और इसीलिए धर्म और भगवान दिखते, सूर्य नहीं दिखते तो क्या होता है? छोटे छोटे वो कीड़े होते ना जुगनू, जिसमें लाइट होता है, वो बरसाती कीड़े जिसको जुगनू कहते हैं, वहां आप गाड़ी लेकर रात में देखे होंगे तो टकराते हैं, तो बस उनमें कुछ प्रकाश नहीं होता और वो ज्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं, तो दो पांच सेकंड का, आधा घंटे का उसका जीवन है बस। तो कलयुग में क्या होगा? सूर्य चंद्र जैसे भागवत ये वेद सब लुप्त दिखाई नहीं देंगे। और ये तथाकथित इस बाबा ने, इस योगी ने, इस बापू ने जो बनाया है कचरा, उसी को शास्त्र, ये जुगनुओं को ही सूर्य मानकर लोग उनके आश्रय पर बैठेंगे, होगा क्या? कुछ नहीं पाएंगे। उदाहरण दिया है सुखदेव जी ने, अरे सूर्य सूर्य है, भागवत सूर्य है, सूर्य के साथ, सूर्य में कभी लाइट जाती नहीं, ऐसा नहीं कि बिजली वाले को फोन करना पड़ेगा भाई कुछ जनरेटर लगाओ। सूर्य अशेष तेजा, ब्रह्म संहिता क्या कहती है? राजा समस्त स्मृतिर अशेष, उसमें अनलिमिटेड पावर है, एनर्जी है, लाइट है, कोई कम नहीं होती। और पृथ्वी से कोई वैज्ञानिक या हमारी सरकार कोई खनिज या पेट्रोल सप्लाई नहीं करती है सूर्य को, लीजिए लीजिए जलिएगा प्रभु जी, जैसे आग गाड़ी में लगाते हैं तो तब गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं है, नेचुरल तेज है, स्वाभाविक। कहां से आया? वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं कि सूर्य में बहुत तेज है, अशेष तेज है, लेकिन कहां से आया? गीता में कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में, यदा आदित्य गतम तेजो, ये आदित्य में जो तेज है ना अर्जुन, मम अंश संभव, वो मेरे तेज का एक पार्ट एंड पार्सल उसमें गया है भगवान। लेकिन इन मूर्खों को तो गीता से बहुत करोड़ों किलोमीटर दूरी बनी हुई है ना, लेकिन भक्त वो समझ सकता है कि नहीं, देखिए सूर्य सूर्य बड़े बड़े लोक भगवान ने हवा में तैरते रख दिए और अबाधित गति से और नियमित चलते हैं, बिना बैठने के, बिना स्टाइल के, मैंने कि इसके लिए कृष्ण ने बहुत दिमाग लगाया, पूरे जीवन का सार लगाया तब इतना बनाया, नहीं, ये तो उनकी फल को ऐसे हो गया, वो तो बंसी बजाते रहते, राधा संग वृंदावन यमुना तट पर रास होता रहता, ये सब तो होता रहता है, मिटता रहता है, कोई मतलब नहीं है। ये है कृष्ण गोविंद, अचिंत्य शक्ति है, समस्त शक्ति विविधेय सूयते न तस्य कारणम करणम च विद्यते कठोपनिषद श्वेताश्वर प्रभुपाद जी ने गीता में इसको दिया है सारा सूत्र। तो भक्तों आप समझे इस बात को, हम वर्णन कर रहे हैं वर्षा ऋतु में, सुखदेव जी कहते हैं कि मेघों का आगमन होते ही मयूर नाचने लगता है क्योंकि उनको मेघों से प्रेम है। यहां पर भक्तों की तुलना उपमा मयूरों से की गई, कृष्ण कथा के जब वैष्णव रूपी बादल आते हैं ना गुरु को भी बादल कहा है विश्वनाथ ठाकुर ने। हम सुबह गाते हैं प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा, कृष्ण कृपा के घने बादल है और उसको त्राण करने संसार दावानल से उबारने के लिए वैष्णवों को भी बादल कहा गया है कि जिसमें कृष्ण कथा प्रेम का जल बरसता है। और इसीलिए कृष्ण कथा प्रेम के लोलुप वैष्णवों को मयूर भी कहा गया है, मोर भी कहा गया है। कृष्ण को देखकर, कृष्ण के भक्तों को देखकर उनकी कथा मिलेगी, इस भाव में भक्त नाचने लगते हैं। किसी भक्त को देखते हैं तो भक्त नाचने लगते हैं, क्यों? क्योंकि इनके मुख से इनको देखते ही कृष्ण का स्मरण आया जो मेरा भवबंधन कर्मबंधन नष्ट करेगा। आप देखिए एक सहज बात, आप किसी भक्त को देखिए किसकी याद आती है, क्योंकि कृष्ण का भक्त है। आप हरे कृष्ण कहेंगे, आप नहीं कहेंगे तो वो कहेगा, वो भी ना कहे तो भी मन में एक बार तो आता है कि हरे कृष्ण वाला। हमको भी आता है, जो नहीं है उनको भी आता है। भक्त अपने दर्शन से कृष्ण का स्मरण दिलाता है, जो सारे विधि निषेधों का सार है। सर्वे विधि निषेधस्तु एव किंकरः सर्वस्मर्तव्यो विष्णु। जितने हम यम करते हैं ये नहीं करना, जितने हम पालन करते हैं ना यम नियम, क्यों करते हैं? भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान को नहीं भूलने के लिए। लेकिन भक्त अपने दर्शन से किसकी स्मरण कराता है? कृष्ण की। कितनी बड़ी कृपा करता है हाँ? और हम उसको देखते हैं, उनके दोष हमारे कंप्यूटर में लाइव हो जाते हैं, ऐसे टिक 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 करके, ये गड़बड़ किया, ये किया। वो भक्त हमें अपने दर्शन, अपनी उपस्थिति से भगवान का स्मरण दिलाता है। लेकिन हाय रे हमारी मूर्ख बुद्धि कि हम उस भक्त को देखकर उनके दोषों का लिस्ट अपने दिमाग में नंबर देने लगते हैं, उनकी गड़बड़ी के। इसको सुधारना पड़ेगा अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं। गुरु करेंगे, शास्त्र करेगा, भगवान वो सब बाद में करेंगे, पहले हम तो चाहने चाहिए ना हमारा उद्धार। हम नहीं चाहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अपना उद्धार चाहता है वो सबसे पहले इस बात को समझे कि भक्त को देखकर उसका मन नाचने लगता है, आनंद में आ जाता है, मयूर की तरह। जैसे वो बादल, सुखदेव जी भक्तों का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में बादल छाए तो मोर नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? गृहेषु तप्त निर्वीणा यथा अच्युत जना में। घर गृहस्थी में चिंता और दुख क्लेश उसको अनुभव कर रहा है व्यक्ति। कल मेरे बच्चों का क्या होगा, धन का क्या होगा, चिंता में हम लोग जल रहे गृहस्थ लोग, है ना? अविद्या जो आप लोग क्या प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते होंगे तो सुना होगा, उपदेश अमृत में प्रभुपाद जी ने कहा है चिंता तो है ही है, आदि दैविक भौतिक आध्यात्मिक है कि नहीं, और उसमें सब जल रहे हैं गृहस्थ खास, क्योंकि उनको चिंता चुड़ैल की तरह लगी हुई है, छोड़ेगी नहीं उसको, है ना? ये करो ये करो ये बाकी। अब ऐसी चिंता से जलता हुआ वो गृहस्थ जब देखता है किसी वैष्णव को जो कृष्ण की कथा अमृत की वर्षा करेगा, तो उसको देख के नाचने लगता है कि इन संताल दावानल से कुछ समय शांति और सुख आनंद मिलेगा, इस भक्त तो मुझे कृष्ण की कथा कहेगा। ये भाव देखिए, सरलता में इस बात को हम समझ सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है गल चौभी कौस्तुभम। कृष्ण जब वसुदेव के सामने प्रकट हुए ना, तो उसने अपने गले में एक लॉकेट पहना था हाँ, जो मणियों से युक्त था हाँ, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का बाप ऐसा नहीं कि कुछ मिला हुआ, हम लोग ऐसे पहनते हैं ऐसे, और वो शाइनिंग गोल्ड है, चमकता हुआ। और उस लॉकेट में एक मणि जड़ित है जिसको कौस्तुभ मणि कहते हैं, वो दिव्य है। ये भगवान के जो ये अस्त्र शस्त्र ये अलंकार जो इसमें वर्णन किए गए हैं वो सब चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ है वो मूर्तिमान एक व्यक्ति है, वो सोच सकते हैं, वो सेवा कर सकते हैं। यहां पर जो अलंकार है या आयुध है वो सब जड़ है, समझ रहे हैं आप? जड़ और चेतन को समझते हैं ना, जिसमें जीव हो ना, जो अनुभव कर सके, जो सोच सके, उसको चेतन कहते हैं। ये जो अलंकार भगवान धारण किए है, शंख या चक्र या कौस्तुभ मणि या जो भी उनके कानन कुंडल जो भी, वो सब दिव्य है, चिन्मय है, वो मूर्तिमान उसकी सेवा में है। प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए हमारे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव जिनको भक्त भूप कहा जाता है, भक्तों का राजा या भक्तों का दास कहा जाता है, दोनों दोनों बातें लिखी है। भक्ति इतनी ऊंची है इसलिए भक्तों में राजा है, लेकिन भक्तों को ही अपना प्राण धन मान के, भक्तों को ही अपना स्वामी मान के हमेशा इस मूड में रहता है कि मैं भक्तों का दास हूं, इसलिए भक्त दास भी टाइटल लगता है। और वे राजा है कुलशेखर अलवार, जिसका लिखा हुआ एक बड़ा सुंदर ग्रंथ मुकुंद माला स्तोत्र इस कान में मिलता है। सभी लोग भगवान को पुष्पों की माला पहनाते, लेकिन इस भक्त ने एक रत्न श्लोकों की रचना की और उसको भगवान के, जिसमें भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के प्यारे भक्तों की महिमा और भगवान की भक्तवत्सलता, ये सारे सद्गुण स्तुति के मात्रम से, श्लोकों के रचना से भगवान को अर्पण किया। इसके ग्रंथ का नाम पड़ गया मुकुंद माला स्तोत्र। मुकुंद तो स्तोत्रों की माला पहनाई गई, हम लोग फूलों की पहनाते ना, वो स्तोत्रों की, स्तुति की ही माला, और पहनाने वाले है कुलशेखर अलवार। और उसके लिए लिखा गया है कि वो कौस्तुभ मणि के अवतार थे। जैसे रामानुज, आप चार संप्रदायचार आचार्य आप सुने होंगे, उसमें वायु के अंश मध्वाचार्य जो हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्य रहे हैं पूर्ववर्ती, ऐसे ही रामानुज जो बलराम के अंश लक्ष्मण अंश, उसमें भी जो निम्बार्क आचार्य हुए कुमार संप्रदाय के अंतर्गत, उसके लिए लिखा गया है कि सुदर्शन चक्र के अवतार, इसलिए तो उनके शरीर में सूर्य जैसा प्रकाश निकलता है। और इसलिए अपने जन्म लीला में शिशिल ने उस ब्राह्मण को उस पेड़ पर सूर्य दिखा दिया, निम्ब अर्थात नीम का पेड़, और उसके ऊपर अर्क सूर्य दिखा दिया, इसलिए तो नाम पड़ा निम्बार्क, सूर्य को पेड़ पर उगा दिया। अब बताओ सुदर्शन के अंश अवतार है, ये सारी बातें शास्त्र, आप निम्बार्क स्तोत्र पढ़ेंगे उसमें प्रथम प्रार्थना यही बताया गया कि सुदर्शन अवतार आयस्ते नमस्ते निम्बार्क आचार्य, मैं उस सुदर्शन के अंश अवतार निम्बार्क को। इसी प्रकार कुलशेखर अलवार्क के विषय में लिखा गया है कि वो भगवान के कौस्तुभ मणि के अंश अवतार थे। जैसे हम वृंदावन में पढ़ते हैं ये स्वामी हरिदास भगवान की बंसी के अंश लीला अवतार थे, क्योंकि भगवान के जितने भी अलंकार है, आयुध है, वो सब दिव्य है, मूर्तिमान बन सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। और उस कुलशेखर अलवार के विषय में लिखा गया है कि वो कृष्ण राम के भक्त थे, रामचंद्र जी के प्रिय भक्त थे, और कृष्ण कथा के इतने प्रेमी थे कि वो कथा में अभिनिवेश हो जाता था तो वो स्वयं चलते बनते थे। तो कथा में उस वक्ता से सुना कि रामचंद्र जी की पत्नी भारिया को सीता ले गया रावण, और भगवान उसके लिए चल दिया, तो वही सैन्य लेके दौड़ा समुद्र के ऊपर, कथा सुनते सुनते भाव में आ गए, और समुद्र में घोड़े के लेके कूदने ही वाले थे, लेकिन किसी प्रकार इन लोग त्रिसंत्रियों ने करके आगे करके वक्ता को आगे लाया, बोला अभी रावण को मार दिया है, युद्ध समाप्त हो गया, तो ठीक है, तो छोड़ूंगा नहीं, हमारे स्वामी हमारी जगत जननी जानकी माता को उठा ले गया, कितना भाव। ये कम से कम हम तो जागे, हम तो कथा में ये भाव भाव तो बहुत दूर है, हम लोग तो केवल जागते रहे तो भी बड़ी कृपा है, कथा में हम लोग जागते रहे तो ये भी सबसे बड़े भगत माने जाएंगे कलयुग में। हम लोग हमने सुना है, भले समझा नहीं, याद नहीं रहा, वो सेकेंडरी स्टेज है, हम सुनते थे, इतना भी हमारा लेवल हो जाए बहुत है कलयुग में, ऐसा भाव आना, तो हम लोग तो अपनी उपस्थिति से दूसरे भक्तों के भाव को भी इधर उधर कर देंगे, लेकिन इसको सुनेंगे तो पता चलेगा। और भक्तों में इतनी निष्ठा थी उस कुलशेखर अलवार की, अपना खजाना, राज खजाना, वैष्णव जो कीर्तन करते थे, जो कथा करते थे, उनके लिए खुला छोड़ दिया, ले जाओ जो चाहे हो। आज कोई खुला छोड़े तो दूसरे दिन कुछ भी बचेगा होगा, क्योंकि भगत ही कोई कम नहीं है कलयुग के। पहले साधु भी इतने लालची नहीं थे, लालच पर भी लगाम होनी चाहिए, लालच का एक घोड़ा है, लालच रूपी घोड़े पर क्या होनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े ऋषि वो इसमें फंस जाते हैं। रामायण में जो नाम है रघु महाराज का, रघु वंश जिसके ऊपर पड़ा, और रघु महाराज यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ खत्म होते ही ब्राह्मणों को दान देना उनका नियम था, यज्ञ में जो ब्राह्मण पधारे वो जो मांगे वो, और नहीं मांगे तो बिना मांगे सब कुछ, वो उनका स्वभाव था। और उन्होंने भाव में कह दिया कि मेरा सारा राज्य, मेरी सारी संपत्ति, मेरा जो भी पशुधन, राजधन, सैन्य जो भी है सब ब्राह्मणों को समर्पित है, पूरा राज दे दिया। उसी समय एक शिष्य, वर्तंतु का शिष्य कौत्स नाम के मुनि, कौत्स नाम के एक मुनि हुए वेदों में, जो वर्तंतु के, वर्तंतु नाम के भी एक ऋषि थे, और उन्होंने विद्या खत्म की तो बोले महाराज गुरु दक्षिणा में आप क्या लेंगे? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें जो विद्या सिखाई है आध्यात्मिक, उस अनुसार तुम जीवन जियो और मेरा यश बढ़ाओ, यही मेरी दक्षिणा है। हम शिष्यों के लिए सुनने लायक बात है, हम लोग कब तक शिशु रहेंगे? प्रभु तो शिशु नित्य है, हम भी भक्ति में शिशु ही रहेंगे, शिष्य बनेंगे तो शिष्य उतार दे गुरु आज्ञा में, इससे बड़े तो नहीं बनेंगे, लेकिन गुरु का शिष्य कम से कम शर्म से झुके नहीं, ऐसा तो रखे है कि नहीं, ऐसा वर्तन तो करे। देखो यहां पर शिशु, गुरु जी ने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा में, फिर भी तू सामने से कह रहा है तेरा भाव है, तो मैं यही चाहता हूं कि मैंने तुम्हें जो वेदों से सिखाया भक्ति आध्यात्मिक विद्या, उस अनुसार तुम जीवन जियो जिससे मेरा यश बढ़े, यही मेरी। अरे नहीं नहीं महाराज, वो तो मैं कर ही लूंगा, आप कुछ और मांगो। ये भी एक अभिमान है शिष्य लोग का, महाराज महाराज आप बैठो गाड़ी में, बैठो ही बैठो, बस आप ले ही जाओ ले ही जाओ। हम दिखाना चाहते हैं कि सेवा है, वो कौन कौन नक्की करेगा? आप गुरु जी को अपना वैभव दिखाना चाहते हो कि उनकी सेवा कर रहे हैं, वो तो हमारा गोविंद अंदर बैठा हुआ जानता है और गुरु भी जानते हैं। सेवा होनी चाहिए लेकिन समर्पण होना चाहिए, अभिमान नहीं। और सेवा उस सेठ को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, उसको नहीं पसंद है वो भी फिर भी आप करिए ही करिए बस, क्योंकि मेरी पत्नी ये चाहती है, क्योंकि हमारे घर से माता जी ये चाहती है कि महाराज आप करिए। बाप रे, ये भी आप अपनी माता जी को गुरु बना रहे हो, गुरु का भी गुरु, तू तो उसकी बात मान रहा है, गुरु से तो उसकी बात मनवाना चाहता है, इतनी बड़ी समर्पण मत रखो भाई। हम सोचते नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, आप सोचिए इस बात को, बड़ी सूक्ष्म है। अभिमान नहीं होता है, कुछ नहीं चाहिए गुरु जी कह रहे, बोले ले देना ही है मुझे कुछ लो। गुरु जी ने सोचा कि कुछ अभिमान बेटे में है तो मांग लेते, 16,000 सुवर्ण मुद्रा ले आओ। शिष्य को चक्कर आ गया, गुरु जी इतना बड़ा मांग, क्योंकि 16,000 सुवर्ण आजकल सोने का इतना कहां से लाओ? लेकिन वो तो ऋषि था, कमाना बमाना उसका धंधा नहीं था, लेकिन राजाओं के पास जाना मांगना उसका धर्म था। और गए रघु के, रघु यज्ञ खत्म कर लिए और सारा दान दे दिए, तब ये पहुंचे प्रभु। अब इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि जो था वो तो दे दिया था ब्राह्मण, और कौश ने जाना वहां जाके कि इनके पास, रघु के पास अब कुछ नहीं। तब लेकिन रघु ने प्रणाम करते हुए कहा, विप्रवर दास को आज्ञा करिए, आप क्यों बता रहे और क्या चाहते? बोले क्या बताए तुमको, तुम खुद खुद कुछ बचा नहीं, उसको क्या कहे? नहीं नहीं महाराज, आप निवेदन तो करिए क्या चाहते। तो बता दिया कि मैं अपने गुरु को दक्षिणा में देना चाहता हूं 16,000 सुवर्ण मुद्रा। बस, अरे बस क्या, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, रिक्शा भी नहीं है, साइकिल भी नहीं बचा, बस क्या? लेकिन तुम बहुत जीत कर रहे थे इसलिए तुमको। अच्छा चिंता मत करो। रघु ने अपना धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया आकाश की ओर, सावधान महाराज कुबेर, कुबेर ऊपर रहता है जो खजांची है सारे देवताओं का, कुबेर महाराज जो जो सारे धनवानों के पति है, क्योंकि राजा की उनके साथ मित्रता भी थी, और कहा कि हमारी आवश्यकता आप समझ ही गए होंगे। अब बाण चढ़ाने से कुबेर ऊपर कांपने लगे और उस रघु के राज्य में सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा की, किसकी? पूरा राज्य, सबके घर सुवर्ण बरस रहा है। हम लोग कितने पापी है कि पानी भी नहीं बरसता, सुवर्ण कहां बरसेगा? लेकिन आज देखो रघु के राज्य का राजा, देखो कितना महान कि उसके राज्य में क्या बरस रहा है, सोना बरस रहा है, सुवर्ण मुद्रा है। और फिर जब वर्षा हो गई एक घंटा तक सुवर्ण बरसा, अभी करोड़ों सुवर्ण मुद्रा पड़ा है। ऋषिवर उठाइए जितना चाहिए उतना, अब तो रघु भी आदर में है, लेकिन वो धन्य है वो कौत्स। भारत का इतिहास, ये उपनिषद की कथा हमें प्रेरणा देती है कि मुझे केवल मेरे गुरु को देने के लिए 16,000 ही चाहिए। लालच तो हम लोग में से कोई होता तो प्रभु मैं टेम्पो बुलाता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। प्रभुपाद जी ने वो गीत उपनिषद में दिया है ना, इसे उपनिषद में इतना वास्यम इदम सर्वम, तो उसमें वो कहानी बताई कि आप कहीं पर बोरी रख दो गेहूं की, तो कुत्ता आएगा थोड़ा खा लेगा, पक्षी आएगा चुन लेगा, गाय खा लेगी, मनुष्य आएगा बोरा उठा के ही जाएगा उसको संतोष नहीं है। पशु पक्षी भी जितना चाहिए उतना खा लेंगे, लेकिन ये दो पैर वाले प्रभु जी उसके विषय में कभी कहा नहीं जा सकते। कुबेर का पात्र भी छोटा रह जाए उनके लिए, और उसकी लालच कभी कम नहीं होती। तो आजकल कोई खजाना छोड़े भी कैसे, क्योंकि सब जगह कलयुग छा गया है। क्यों कलयुग छा गया है? श्रील प्रभुपाद जी कहते कि हम कीर्तन नहीं करते, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां कलयुग नहीं आ सकता, माया नहीं। लेकिन कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण की कथा, वो है तो कलयुग आएगा, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं है तो कली तुमको अपनी अपने शिकंजे में है, अपने को ग्रस्त कर लेगा तुम। इसलिए कलयुग से बचने के लिए कलो तत् हरि कीर्तना, हरे कृष्णा हरे तो लालच नहीं थी। कुलशेखर आलवार ने अपना जाना खुला छोड़ दिया। अब हुआ क्या, कुछ मंत्रियों की बुद्धि बिगड़ गई, बोले ये राजा इन भिखमंगों को, ये वैरागी मुंडी लोगों को सब दे देंगे और हमारा सैलरी वैसा का वैसा ही, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। और राजा के खजाने में जो सबसे कीमती बहुमूल्य हार था खुला ही रखता था, इसने चुरा लिया। और मुनियों के आश्रम जो राज कथा सुनाने आते थे कीर्तन करने, उसके आश्रम में इन लोगों ने पहुंचा दिया। और राजा को कहा कि ये हार चुरने वाले और कोई नहीं, यही लोग हैं जो ये कीर्तन करने आते हैं, कथा करने आते, यही लोगों का धंधा है। लेकिन राजा इतना भक्त था कि भक्तों के प्रति स्वप्न में भी उसको बुरा विचार, किसी का सुना तुरंत मान ले वो मूर्ख। आपको कोई आकर के प्रभु जी एक बात बची कि सूर्य काला हो गया, ये मानना भी मूर्खता है कि नहीं? जो असंभव वस्तु है, मूर्ख लोग अपनी बुद्धि से कुछ बना ले, कुछ सोच ले, वही सत्य नहीं हो जाता? साधु पुरुष और वैष्णव का चरित्र बताता है। भक्तों आप सभी लोग यहाँ पर प्रति रविवार प्रतिदिन अपने घर में भी ये सुनते पढ़ते हैं शास्त्रों के ये पवित्र चरित्र, क्यों? क्योंकि हमें ऐसे सुंदर अपने को बनाना है जिसे कृष्ण जो सबको आकर्षित कर लेते हैं उसको हम आकर्षित कर ले, क्योंकि जो सरल है हाँ, जो अहंकार काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से शून्य है, कपट से जो शून्य है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। वैष्णव का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना क्या है कि वो सरल हो, निष्कपट हो, ऋणादपि सुनिचर जो हमारे महाप्रभु ने, वो भगवान को प्रिय है। और भगवान को कौन कौन प्रिय है, गीता का 12वां अध्याय पढ़िए, सदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा, भगवान ने उसमें सत्य में प्रिय बहुत सारे प्रिय, कौन मुझे प्रिय है? लेकिन ये हम पढ़ते सुनते हुए भी अपने आप पर कभी देखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब पढ़ते सुनते भी हम देखिए कुलशेखर आलवार क्यों कृष्ण को इतना प्रिय है, क्योंकि उस कुलशेखर के जीवन में भक्ति ही प्रिय है। और जो भक्तों को प्रिय मानता है वो भगवान का प्रिय हो ही जाता है, क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय है और भक्त जिसको प्रिय है वो भगवान को प्रिय है। ये साइकिल है पूरा, अपने आप चलता है। कुलशेखर की भक्ति इतनी ऊंची थी, इसीलिए लिखा गया है सुरूपम सुनेत्रम सुगात्रम सुवक्त्रम। किसी के सुंदर नेत्र हो, सुनेत्रम सुरूपम बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम हो, कुछ सुवक्त्रम किसी का मुखारविंद चंद्रमा से भी सुंदर हो, हम लोग कहते हैं ना मुख चंद्र कृष्ण के विषय में, लेकिन किसी आजकल कवि लोग किसी के सामने भी जोड़ते रहते हैं। सुरूपम सुनेत्रम सुगात्रम सुवक्त्रम, गात्रम मतलब मुख ही नहीं, शरीर के सारे अंग सुंदर हो। मुखे वेद गानम ही समग्र शास्त्रम, जिसमें जिसके मुख में शास्त्र ही निकलता हो, वेद के श्लोक ही निकलते हो, जिसके सारे अंग सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, मुख सुंदर हो, इतना ही नहीं सारा शरीर सुंदर हो और विद्वान भी हो, ताकि वेदों के श्लोक बोलता हो, सारा शास्त्र उसको याद हो। मुखे वेद गानम समग्र ही शास्त्रम, परंतु चरित्रम पवित्रम न ते विद्यमानम, लेकिन जो कपटी है, सुंदर तो है लेकिन ईर्ष्यालु है, विद्वान तो है लेकिन कपट कर रहा है, चरित्र उसका पवित्र, कैरेक्टर इज द लॉस, एवरीथिंग इज द लॉस, है ना इंग्लिश कहावत, जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया, ऐसी बात। चरित्रम पवित्रम न चेत विद्यमानम मनुष्य सर्ववृतय किंतु शून्यम, सब कुछ है लेकिन जीरो, बेकार, सब कुछ है, धन है, विद्वत्ता है, रूप है, लेकिन भक्ति नहीं, कपट शून्य, कृष्ण सेवा का विचार, चरित्र जिसका पवित्र नहीं तो सब शून्य, जीरो, सब बेकार है, सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए इन पवित्र चरित्रों को सुनना है तब पवित्र बनेंगे। जो टीवी में हम देखते हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं, उन लोगों का रूप है, धन है, लेकिन पवित्रता है, ये सब कैरेक्टर लेस पर्सन है, जो जो हीरो है, जो हीरोइन है, या जो स्टार है, जो भी चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और उनको देखते सुनने से पवित्रता आने वाली नहीं है। पवित्र व्यक्ति के गुणगान से पवित्रता आएगी ना। देखिए कुलशेखर आडवाणी का पवित्र चरित्र, कौस्तुभ का उत्तंश अवतार, क्या कर दिए, बोले मैं नहीं मानता, और उसने लिया है तो उसमें मेरी कमी है कि मैं देने नहीं गया। अब बताओ राजा देखो क्या सोच रहा है, कि मैं मानता ही नहीं, उसने लिया, लेकिन अगर उसको लेना भी पड़ा तो उसमें कमी किसकी है, मैं राजा की, राजत्व की, क्योंकि मेरे मेरे प्रजा को चाहिए और मैं दे नहीं पाया। लेकिन इन लोगों ने बहुत उकसाया मंत्रियों ने कि आप क्या कर रहे हो, राजधर्म के विरुद्ध है, क्योंकि जो चोरी करता है वो दंडनीय है, एक से दूसरे दूसरा सीखेगा, तो आपको अब बहुत उकसाया। तो राजा ने कहा ठीक है, एक घड़ा लाओ, उसमें सुवर्ण मुद्रिका सब डाला, मणि आदि जो भी खजाने, और बड़ा विषधर काला नाग उसमें बिठा दिया सबके देखते देखते। बोले अगर इन ऋषियों ने मेरे राज्य में रहते हुए मेरे राज खजाने में चोरी की है, क्योंकि चोरी में मानता नहीं, क्योंकि उनके लिए मैंने खजाना खुला छोड़ा, मान लीजिए मैंने अपनी खिजोरी खुली छोड़ी हो और अब कहा हो कि जिसको जो चाहे ले जाए, आप ले जाओ तो चोर माने जाओगे, खुला ही छोड़ा है, चोरी की आवश्यकता कहां रहती है, जब मना किया जाए, लोप किया जाए और उसके विरोध करे तब, वो तो खुला ही छोड़ा है तो चोरी का कहां प्रश्न है, लेकिन बिना के ले लिया तो चोरी है। इन लोगों देखो नीतिकार तो कुछ ना कुछ घुसा करते, बोले बिना देखे लिया ना, चोरी चोरी है, चढ़ाया। महाराज ने कहा इसको पूरा निराकरण करना। बोले ये विषधर काला सर्प जिसको दस ही मर जाए ऐसा भयंकर, अब अगर मेरे राज में ऋषियों ने चोरी की है तो मैं अपना हाथ इसमें डालता हूं खजाना उठाने के लिए, क्योंकि सर्प तो तुरंत देखेगा ना काटेगा, अगर चोरी की है तो मुझे काट लेगा और नहीं काटा तो चोरी, देखो परीक्षा कर रहा है अपनी, चोरी की है उसकी नहीं। देखो ये राजा का कुछ विचार तो करो, कितना पवित्र चरित्र है, वो मान ही नहीं रहा है, फिर भी एग्जाम बनाया, परीक्षा बना रहा है, तो कैसी बना रहा है अपनी, तो अगर मेरे राज्य में ऋषियों ने चोरी की है तो सर्प मुझे काट लेगा, और बिंदास उसने हाथ डाला कई मिनटों तक और वो सुवर्ण उठा के कुछ नहीं हुआ। अब कहा कि जिसने ये आरोप लगाया है वो मुझे हाथ डाले, अब थर थर कांपने लगे, उनकी बीवियों का मोबाइल आने लगा, प्रभु तुम्हें घरे भी आओ जल्दी, आप घरे आ भी जाओ तुम्हें, कारण कि ये जानता हो ना वो तो उसको पहचानती होती है ना, बोले आप घर पर आ जाओ प्रभु जी, बोले राजा आप फंसकने नहीं देगा, फिर तो फिसलने नहीं देगा किसी को, हम क्या हाथ डालेंगे अभी, क्या डालते ही वो डसने वाला है तुरंत। लेकिन भगवान ने कृपा कर दी, कौस्तुभ मणि के अवतार थे, वही हार जिसमें दिव्य मणि लगा था, क्योंकि ये तो साक्षात मणि, भक्त ही असली मणि है, ये संसार के रत्न है वो थोड़ी मणि है, भक्त असली मणि है ना, वही असली भक्त है, और वो स्वयं मणि क्या होता है, उन्होंने देखा कि उसमें से ही वो जो ऋषियों के आश्रम में रखा गया था वो मटके से निकल गया, वही मणि से रत्न जो, और सारे अपने मुंह तले उंगलियां दबाने लगे, भागने लगे, लेकिन उसी ऋषियों ने आकर कहा कि क्षमा कर दीजिए महाराज, इन लोगों को वे कुलशेखर आलवार जो कौस्तुभ मणि के अवतार, जो कथा के प्रति, भक्तों के प्रति इतनी रुचि रखते हैं, सेवा रखते हैं, स्नेह रखते हैं, और वे अपने इस स्तोत्र में जो भगवान को पहना रहे, उसके बड़े बड़े प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी बहुत आस्वादन करते थे, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते, उनका श्लोक है, निरंतरम कृष्ण रसायन भी उसका श्लोक है, और उस इस जन्म प्रकरण में भी उन्होंने एक श्लोक गाया है, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, हे जय देवो के देव, आपकी जय हो, क्यों? क्योंकि आप देवकी नंदन कहता कहलाते हुए प्रकट हुए इस भूमंडल पर, इस प्रापंचित जगत में। और कैसा है आरा शरीर? जयति जयति मेघ श्यामल को मलांगो, बालक क शब्द की व्याख्या आपने सुबह प्रभु जी के मुख से बहुत सुंदर सुंदर सुनी, और एक विशेष बात उसमें है कि क कोमलता के अर्थ में होता है, बाल कह दिया जाए तो भी बालक का बालक ही प्रेरित होता है, लेकिन क शब्द कोमलता के अर्थ में है, जो जो अत्यंत कोमल है, जिनके अंग इतने सौष्ठव है, कमल के पत्ती से भी कोमल, कमल की पत्ती हूँ जिसको देखकर लज्जा को प्राप्त हो जाए, इतने हमारे श्याम सुंदर के स्त्री अंग कोमल है, ऐसा ये कोमल शिशु सुंदर बालक जिसकी शोभा कैसी थी, सांद्र पयोद सौभगम, जयदेव जी ने इसको गाया है, ऐसा है जयदेव जी ने जय जय देव हरे गीत गाया है ना, मंगला जी को जो जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है आरतियों में, श्रीधाम ओडिशा में रथ यात्रा के कार्ड सेवा बट रही है, भक्त लोग कर रहे हैं तो याद कर रहे हैं हम लोग, उसमें वही उन्होंने गाया है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, जिन्होंने मंदर पर्वत गोवर्धन या तो कछवा बन के मंदर भी तो वो भी धारण किया था, कैसा है उनका श्री अंग, अभिनव जलधर, जिसमें अभी अभी नया नया जल धारण किया है, ऐसा बादल जैसा श्री विग्रह है जिनका, और जिसको कौन देखती रहती है, भक्त शिरोमणि भानु ललित श्री राधा के नयन चकोर बन के जिनको देखते रहते हैं, त्रिमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्री श्री मतलब राधा रानी, इसमें भी लिखा है श्री वत्स लक्ष्म्यम, वही राधा का काय व्यूह गोपिया महिषिया, और उसका काय व्यूह लक्ष्मी स्वरूपा, जो वैकुंठ में सहस्र लक्ष्मी सहस्र सर्व संभ्र सेव्य मानम, और उस लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने जिसको अपने वक्ष स्थल में स्थान दिया, वे स्त्री लक्ष्मी या तो राधा रानी को भी क्या कहते हैं, स्त्री। देखो देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में आए, और यही कृष्ण यशोदा के सामने द्विभुज में प्रकट हुए, एक साथ। हमारे आचार्यों ने इसको सिद्ध किया है भागवत से ही कि नंदन नंदन यशोदा नंदन भी है, पहुंचाए जाने के पहले से ही देवकी नंदन और यशोदा नंदन एक साथ। देखो हरिवंश पुराण में लिखा है व्यास जी ने कि देवकी मैया को 9 महीने पूरे नहीं हुए थे, 8वें महीने में ही भगवान प्रकट हो गए कंस को चक्कर में डालने के लिए, कंस इंतजार में था, अभी 9 महीना होगा, उसने सारा रचा लिया था, लेकिन कृष्ण 8वें महीने में अधूरे महीने में ही प्रकट हो गए, भाद्र अष्टमी अर्धरात्रि निशिते उद्भूते जाय माने जनार्दने, इसके पहले वाला श्लोक, निशिते मतलब अर्धरात्रि में प्रकट हो गए, कौन? जनार्दन, जो जनों का अर्दन माया को नष्ट दुख को दूर करने वाले श्री भगवान जाज माने प्रकट हो गए, किधर? देवत्या, देवकी के सामने, कथम भूतम देवत्या देव रूपिण्या, जो देव स्वरूपा थी, अर्थात देवकी माता का शरीर भी संसार की स्त्रियों जैसा, स्वर्ग की स्त्रियों जैसा पंच मौतिक देह नहीं है, भगवान जैसा सच्चिदानंद है, जिसके शरीर में हाड़ मस आदि कुछ प्रंचिक वस्तु नहीं है, ऐसे देवकी के शिव विग्रह में भी ये कचरा नहीं है, देवकी भी चिन्मया है, देव रूपिण्या है, और उसके उधर में भगवान आए, कैसे आए? तो कहते प्राच्या दिशा इंदुरी व पुष्कल, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है, देखो आप सबने देखा होगा रात्रि में चंद्रमा पूर्व दिशा से निकलता है, लेकिन पूर्व दिशा से निकलता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूर्व दिशा उसकी माँ हो गई। चंद्र अलग है, दिशा अलग है, वो तो वहां से निकलने का आभास होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्र, हम लोग कहते हैं कि सूर्य पूर्व से निकला, लेकिन सूर्य ऑलरेडी है, दिशा से निकलना वो आभास होता है। ऐसे ही लग रहा है कि देव जी के उधर से प्रकट हुए, लेकिन भगवान तो क्या है, अजन्मा जयति जयति देवो। जी भागवत में यह है, जन्म देव की जन्म वादो, ये तो वाद चल गया कि देवकी ने जन्म लिया, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन ये तो अजन्मा है। सबको जन्म देने वाले ये है, लेकिन फिर सबको जन्म देने वाले है तो फिर क्यों जन्म लिया, ऐसे ही प्रकट हो जाते सामने। हाँ, लेकिन देवकी ने तपस्या करके अपना पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान मांगा था और दिया था तो सत्य करने, और दूसरी बात कि जब तक अपने कुक से प्रकट हुए ऐसा भाव न हो तब तक ममता जागृत नहीं होती। तो ममता नहीं होगी तो वात्सल्य रस कैसे बहेगा। इसलिए भगवान ने उस देवकी के उधर का आश्रय लिया था कि देवकी ये सोचे मेरा पुत्र है, मेरा लाला है, और तब ये मोह ममता उसमें, ताकि वो आध्यात्मिक ममता मोह है, ये संसार का मोह नहीं। योग माया के द्वारा लीला शक्ति ये कर रही है, देवकी रही है कि मेरा पुत्र है, ताकि उसे प्रेम बरसा सके, रस आ सके, इसीलिए देवकी के उधर से। लेकिन आप कह रहे हो कि अष्टमी तिथि थी और चंद्र बता रहा है पूर्ण, क्यों? हाँ भाई, क्योंकि चंद्र ने सोचा कि ये परम परमेश्वर प्रभु मेरे वंश में मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए, मेरा नाम अलंकृत करने के लिए पधारे हैं, तो उसी मूड में उसको इतना रोमांच हो गया कि वो 16 कला का हो गया, पूर्ण पूनम का चांद हो गया। ऐसे वो पूर्ण चंद्र ही था, वो तो उसके ससुर जी ने उसको घटा दिया। आपने सुनिए ना कथा स्वयं की, चंद्र की और रोहिणी नक्षत्र वाली कथा। तो रोहिणी ने मांगा और दक्ष क्रोध में आ गया और जमाई को समझ लिया कि तू तेरी कला कट जाए, घट जाएगी, इसलिए चंद्रदेव बेचारे, नहीं तो एक ही चंद्र होता था पूरा। चंद्र की भी बड़ी बड़ी कथा है, द्वितीया का चांद भाले बाल विदु हमारे महादेव धारण करते हैं, जो समुद्र से निकल, अरे समुद्र से निकला है तो अत्रि का पुत्र कैसे है, ये सब चक्कर है पुराणों का। आप कह रहे हो कि समुद्र मंथन में चंद्र निकला जिसको शिव जी ने धारण किया, और वो तो 8वें स्कंद में आप सुखदेव जी बता रहे हो, और 3रे स्कंद में वही सुखदेव जी ने भागवत में बताया कि अत्रि मुनि के यहाँ ब्रह्मा जी अपने एक अंश से चंद्र सोम रूप में प्रकट हुए, अत्रि के बुध हुए, बुध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के ययाति, उनके नहुष, उनके यहाँ यदु, और उस वंश में कृष्ण आए चंद्र वंश। इसके लिए आप लोगों को ये सारा चक्कर समझने के लिए दो काम करना होगा, क्योंकि हम लोग के पास बुद्धि कम है, समय नहीं है, दो ही काम करना, क्या करना है, महामंत्र जपना है और महाप्रसाद खाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। पुराने ब्रह्मा ये सब का निराकरण है, लेकिन न भी हो तो भी हमारे लिए दो ही काम है, महामंत्र खाना, महाप्रसाद, इसके द्वारा सब समझ में धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, हमारा वो लेवल होगा तब धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग रोड वाले और समझना चाहते करोड़पति को, तो जब तक करोड़ आएगा तब समझ में आता ना कैसा होता है पति, अभी तो है ही नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए हम लोग में वो भक्ति, वो सामर्थ्य, वो इंद्रिय सब अपूर्णता अपूर्णता है, इसलिए थोड़ा झंझट होता है, लेकिन इसका सत्य शास्त्रों की बातें झूठी, लेकिन कल्प भेद के अनुसार, लीला भेद के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार सब क्रम होता है लीला का। तो प्रभु जी हम बता रहे हैं कि चंद्र वंश में भगवान प्रकट हुए अष्टमी, तो ये भगवान ये बता रहे हैं कि चंद्र पूर्ण पूर्णिमा का हो गया, आनंद में आ गया इसलिए। लेकिन आंतरिक बात यह है कि जो भगवान राम बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, वरा बनते हैं, राम शरीर नरसिंह रूप, वे कृष्ण स्वयं आए अवतारी पुरुष, और वो आए हैं तो सारे अवतार उसके अंदर आ गए, वही भगवान सारे अवतार लेने वाले हैं, और पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुष तो सारे अवतार वही लेने, वसी के अंदर है, इसलिए वो अंश से नहीं। इस बार जो देवकी के गर्भ में आने वाला है वो कौन है, पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम, अंश कला ये अवतार नहीं आ रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि देवकी के गर्भ से है, जैसे दिख रहा है दिया कि चंद्र पूर्व दिशा से आया, कितना मार्मिक वर्णन है। लेकिन ये तो आप ऐश्वर्य सुन रहे हैं, हमारे गौड़ीय धारा में ऐश्वर्य भी एक उपाधि बोला गया है। हम तो कृष्ण के प्रेमी माधुरी के रब में रचने वाले, महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, रूपानुग है रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार। यशोदा के यहाँ यही कृष्ण, हरिवंश पुराण भी कहता है कि आठवें यही उसी रात्रि को प्रकट हो गए द्विभुज के रूप में। और तब वहां वर्णन हमारे रसखान ने किया है कि क्या हुआ, कंस सुनो कुटी पानी आकाश की जावन ध्याव ही मारन धायो। कंस ने क्या सुना था कि जो जन्म लेगा वो मारेगा। कंस सुनी बानी आकाश की जावन हार, जो जन्म लेने वाला वो क्या होगा, मारण हार, वही मारने वाला होगा ना। और जो वाणी तो सत्य होगी, कंस ने कुछ भी किया लेकिन क्या हुआ, सावन भाद आठव की रेन। ये समय जब आया, वो अष्टमी तिथि आई, तो देवकी के गर्भ से जसोमती और देवकी मैया ने एक सुंदर लाला जन्म दिया। देवकी के उदर में, यशोदा के उदर में वो लाला कैसे लग रहे थे, जैसे वृंदावन के रमणीय सरोवर में नील कमल खिला हो। आपने पिंक कमल देखा होगा, येलो कमल देखा, लेकिन एक नीले रंग का भी कलर जो आकाशी स्काई ब्लू, ऐसा भी एक कमल होता है, नील कमल खिला हो जैसे, ऐसा लग रहा है। और तब हुआ क्या, सारे देवता स्तुति की, ये सब कथा तो है लंबी चौड़ी, लेकिन रहस्य यह है कि जिनके लिए योगी लोग तपस्या करते हैं, ध्यान धरते हैं युगो युगो तक, हाँ वेद पढ़ते रहते हैं, तप करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं, जिनको देख नहीं पाते, जिनको मिल नहीं पाते, लेकिन काहू न चोजुग जागत पायो सो रात जसोमती सोवत पायो। दुनिया जिनको जाग जाग के तप करके व्रत करके न पा सकी, उसको माता यशोदा प्रेम भक्ति के बल पर सोते सोते पागी, जागी तो लाला कर। दुनिया जागती हुई, योगी लोग जपते रहे तपते रहे, और फिर क्या कहते, जब तप के बाद ही भगवान निराकार लो। और ये माँ यशोदा गोकुल में सोई थी, गोकुल में सोने से भगवान मिलते हैं भाई, देखो वृंदावन की महिमा। और जन्म लेते ही आगे वर्णन आएगा कि वसुदेव ने दान दिया 10,000 गायों का, था नहीं लेकिन मन में दिया, बोले बाहर निकला तब दूंगा। और नंद बाबा के पास तो प्रैक्टिकल था, तो उसने तो दिया, दीजिए ब्राह्मण देवता, क्योंकि हमारा लाला हुआ है, लाला के नाते हम देते हैं तो आगे चलकर लाला को मिलेगा। अभी थोड़ा सा सोना दिया यशोदा ने, लाला को बड़ा हुआ तो सोने की द्वारका ही मिल गई। देखो कितना, ब्राह्मणों को दिया हुआ, वैष्णव को दिया हुआ फैल नहीं जाता, थोड़ा सा दान दिया नंद यशोदा ने, इसको क्या मिल गया, सोने की। थोड़ी सी गैया दान में दी, इसको कितनी बहू मिली, 16,108। रेशन कार्ड में भी नाम नहीं मिलेगा, कार्ड भर जाएगा पूरा, फ्लॉपी डिस्क जीबी फुल हो जाएगा, बच्चों का नाम डालेंगे तो सारा जीबी फुल। बाद में कहा जाए कृष्ण वासुदेव यादव, रुक्मणी वासुदेव यादव, करते करते जाएंगे फिर प्रद्युम्न, मुलगा मुलगी, तो सब फिनिश। आधार कार्ड में कोई नाम ही नहीं रहेगा, सारे जग का आधार वो है। लेकिन दिखाया भगवान ने कि जो मेरे लिए किया जाता है वो हल नहीं जाता, तो दिया, दिल खोल के दिया इन लोगों ने। भगवान के जन्म का बड़ा मधुर रहस्य प्रकरण है, और हम यही बताना चाहते हैं, भगवान ने पीतांबर धारण किया तो देखिए आप उस दृश्य को, आप निहाल सकते हो, ये ऋतु चल रही है कि जब बिजली होती है तो उसमें बादल में शाइनिंग प्रकाश हो जाता है कि नहीं, लेकिन वो चंचला है, सौदामिनी उसको संस्कृत में कहते हैं, बिजली को दामिनी कहते ना बिजली को, वो क्या होती है चंचला, देखते देखते अप्रकट हो जाती। लेकिन हमारे लाला के शरीर पर जो ये पीताम्बर है ना, वो नित्य बिजली के समान है, कभी अलोक अप्रकट, क्योंकि घनश्याम वर्ण है और उसके ऊपर ठाकुर जी का पीला पीताम्बर ऐसे फहरा रहा है जैसे लग रहा है कि बादल में बिजली नित्य चमक रही है, कभी गिर जाए नष्ट हो जाए ऐसा नहीं, नित्य चमक रही है बिजली। और वे लाला फिर शंख बजाते हैं क्षेत्र में बैठ, या वो लाला अपनी धरोहर बंसी सजाते हैं। देखो ये सारे हमारे इंद्रियों के उपयोग, कथा सुनना ही रस की पुष्टि करेगा, प्रेम प्रदान करेगा। हमारे गुजराती में केस है कि इंद्रियों ने राजी राखवा नहीं, इंद्रियों ने साजी राखवानी जरूर, इंद्रियों ने राजी राखवानी जरूर नहीं, इंद्रियों ने साजिर, साजिर मतलब इंद्रियों को खुश करना हमारा धर्म नहीं है, इंद्रियों को स्वच्छ करना, पवित्र करना हमारा धर्म। अगर नहीं करोगे ना तो आज इंद्रिय तुम्हारी हर राज्य कराई लागे। अगर ये इंद्रियों को हम नहीं कंट्रोल करेंगे ना, वाचो वेगम मनुष्य क्रोध आदि जो रूप गोस्वामी ने कहा, या गीता में भगवान ने कहा इंद्रिय इंद्र व्याकुलम लोग, हाँ भगवान ने कहा कि कुर्म अंगानी सर्वश, इंद्रियों को कंट्रोल करने का कितना द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया, और इसको सरल भाषा में भी गाया गया है, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इंद्रिय रूपी घोड़े को भागने मत देना आप लोग, उस पर सदा संयम के घोड़े लगे, उस पर हमेशा कंट्रोल करो, नहीं 12 बजा है संडे लेकिन मैं गिरधारी में जाऊंगा, उधर नहीं, मॉल में नहीं, टॉकीज में नहीं, महाप्रसाद भले खिचड़ी है सादा राइस अंदर खाऊंगा, पाव भाजी में रोकना पड़ेगा अपने आप को, कंट्रोल करना पड़ेगा। हम मुख पर गोविंद गोपाल गाते चलो, बड़े हिंदी में भी इसको बताया गया है सरल रूप में, क्योंकि ये कृष्ण ही हमारे इंद्रियों के शक्ति देने वाले हैं। ऋषि के ना ऋषि के जो सेवन हम भक्ति होते थे, और उसको उसकी सेवा में लगाना यही भक्ति है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि वसुदेव अपनी आंखों से कृष्ण को देख रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। जिन्हें अपनी आंखों से कृष्ण को देखा उनकी आंखें धन्य है, बाकी तो मोर पंख जैसी बेकार बताई ना इन आंखों को, ये कान जो कृष्ण कथा सुनता है वो धन्य है, नहीं तो क्या बताया सांप का दिल। हमारे गुजराती में इसको भी बड़ा सरल कहा है, राम नाम ना लाडवा लागे रे मिठड़ा, जो कान की कथा सांभड़ो नहीं तो ई राफड़ा, सांप जिसमें रहता है ना गुजराती भाषा जो समझते उसको समझ सकते। अगर आपके हाथ तुम्हारा हाथ कृष्ण सेवा मा तो सारा नहीं तो फावड़ा, फावड़ा खाए हो अब, और जलेबी का पति माना जाता है, जलेबी नाम की स्त्री है उसका पति है फाफड़ा, वो विजयादशमी को चलता है तो वो फाफड़ा होता है लंबा लंबा, तो कोई काम का नहीं है तुम्हारा हाथ, ऐसे गुजरा सही बताया एकदम क्लियर कि अगर कृष्ण सेवा में नहीं लग रहा है तो बेकार है सब कुछ। और उसको लगाने के लिए जिसकी लगी है, चाहे वसुदेव या कुलशेखर हलवा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य है। इसको सुनते सुनते ही वो भाव वो रुचि जागृत होता है। पीताम्बर कितना लिखा है पीताम्बर पर, एक भक्त ने पूछा कि पीताम्बर भगवान के उदाहरण, बोले हमारे राधा रानी का कलर भी ऐसा ही है, अब तक कंचन और तपाए हुए पीले सुवर्ण वर्ण की है, तो भगवान कहते कि राधा तू ही मेरा प्राण धन है, इसको तुझको लपटाए रखता हूं। पीताम्बर मतलब राधा रानी का भाव है कि और दूसरे भक्त लोग कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान की शौकीन है, उसको कॉन्ट्रास्ट मैचिंग का बहुत मालूम है ना सब, तो खुद घनश्याम है तो उस पर पीला जचता है, तो ऐसा होता है ना कॉन्ट्रास्ट, आप लोग जानते होंगे जो मैचिंग करने वाले जो मेल करते हैं कलरों का, तो भगवान को वो सूट होता है बड़ा, इसलिए पहनते जो भी कहे भगवान के पीताम्बर धारण करना, ये उनका सहज नेचुरल स्वभाव है और स्वरूप है। अब आप देखिए एक भी बच्चा विश्व इतिहास में ऐसा हुआ पीताम्बर को छोड़िए, एक चड्डी भी पहन के आया हो कभी, नीली काली पीली धोली धोती कुछ भी नहीं ना, अरे इतने बुद्धू हो जाते हैं कि बड़े होकर भी नहीं पहनते और उसको ही धर्म भक्ति मान लेते हैं। मूर्खता की हद कहां तक चल गई आप देख रहे हो कलयुग में। लेकिन देखिए भगवान का जन्म कि पीताम्बर धारण किए हुए हैं और क्या लॉकेट पहने हुए है कोई कि सोना पहन के आया हो। भगवान का जन्म इसलिए सुनने की और सुनाने की आवश्यकता है हमें जगत में, ताकि हम मूर्खों को या मनुष्य को भगवान न मान लें। कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसके गले में कौस्तुभ मणि था, उसने पीताम्बर धारण किया था, तो अभी जो प्रभु जी पधारे हैं या आप जिसको गुरु को भगवान मान लिए हो उसके उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो जन्म लिया तो नर्स पीछे घूम रही थी पोलियो का इंजेक्शन लेते हुए, क्या क्या लगा था और यहां पर क्या वर्णन है सौभगम, लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों की सेवा करती है, सबसे सुंदर स्त्री जिनकी अर्धांगिनी जिसकी दासी बनी हुई है, अमुजेक्षणम भगवान की आंखें कमल जैसी थी। आजकल कोई बच्चा जन्म लेता है कमल जैसी आंखें किसी की नहीं खोलता ही नहीं है, ऐसे हो जाए कुछ को तो बड़े होके भी नहीं खोलता और बड़ा होकर तो नंबर लगा के हो जाएगा, कमल जैसी आंखें कभी है किसी, और इन आंखों से क्या क्या निकलता है उसकी क्या हम चर्चा करें। आप सबके आंखों से क्या क्या मसाला निकलता है आपको पता है ना, सुबह उठे हो तब कभी रोग हो जाता है, इन आंखों से क्या निकलता है। लेकिन भगवान कृष्ण की आंखें कमल जैसी है, जिसमें अमृत मधुर रस निकलता है, जिसको देख के शिव ब्रह्मा की समाधि टूट जाती है, ब्रह्मा का अप्सरा का मेनका का नित्य असर, बड़े बड़े नारद तंबूरों की वीणा अटक जाती है। भगवान की केवल आंख खुलते ही, भगवान की आंख खुलते सारी प्रकृति खिलने लगती है। पशुओं पक्षियों के साउंड उसके गलों में कंठ बजने लगता है, वृक्षों में पुष्प और फल खिलने लगता है। भगवान की आंखें खिलती है तो क्या क्या होता है लिखा है वेदों में, और हमारी खुलती है तो क्या क्या होता है, क्या वर्णन कर। और इसी मूर्खों को हम भगवान मान लेते हैं। इसलिए एक अंतिम बात बताना चाहूंगा, घड़ी हमको मना कर रही है, इसलिए ये इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अनन्यता की बात अंतिम बताऊंगा आप लोगों को। कमल नयन की बात चली, जिसको कहा है अम्बुषण, भगवान की आंखें कमल जैसी। एक और सुबह प्रभु जी ने बड़ा सुंदर किया था वल्लभाचार्य की, कमला अर्थात लक्ष्मी जी, अंबुजा जो जल से जन्म लिए, लक्ष्मी का नाम है सिंधुजा या अंबुजा, और वो जिसको देखती रहती है, सारी दुनिया लक्ष्मी को देखती रहती है। लक्ष्मी किसको देखती रहती है, जिसको वो जन्म लिया। लक्ष्मी ने सबको चक्कर में डाला, प्रभु हम देखो आप लोग विचार करो, धन लक्ष्मी इकट्ठा करने में हमारा दिन बीत जाता है, सारा समय निकल जाता है, ये दुख की बात नहीं है। धन इकट्ठा करने की चिंता करने में हमारा सारा जीवन निकल जाता है, ये अफसोस की बात। धन कमाने में दिन जाए ना तो कुछ माना भी, तो जो कमाता नहीं उसकी चिंता में हमारा समय निकल जाता है। और शास्त्र क्या कहता है, अर्थ अर्जन है दुखम, अर्थ धन को अर्जन करने में दुख ही मिलेगा, तथेव परिपालने उसको इकट्ठा करने में संभालने में भी क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। फिर वो धन क्या होगा, नाश होगा, नाशे दुखम। अच्छा नाश होगा मतलब कोई ले ले गया चोला, लेकिन किसी को आपने यूज कर दिया, कुछ व्यय कर दिया खर्च, तो भी सुख थोड़ी होता है, व्यय दुखम। उसको कमाने में दुख, संभालने में दुख, नाश हो जाए तो दुख, खर्च हो जाए तो दुख की माँ है उसको तुम इकट्ठा कर रहे हो। जो दुख की जननी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के लक्ष्मी नाथ को छोड़ के उसके पीछे भाग रहे हैं, जो चिंता का कारण है। भगवान ने एक बार कहा लक्ष्मी जी को, तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठे बैठे मेरे चरणों में, मेरे भगत दुखी, जाओ उसके पास। तो एक भगत माला कर रहा था, बड़ा दुखी था, लक्ष्मी जी आई, मेरे प्रभु का आदेश है, मैं कल तुम्हारे घर आने वाली हूँ, तो मेरे स्वरूप के साथ बोलो, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो भगत ने कहा माता जी मैं तो कभी सोचा नहीं ऐसा, लेकिन एक काम करो कल आना। बोले मैं कल ही आऊंगी, सोच लेना क्या चाहिए। लक्ष्मी जी चली गई और वो भगत माला को साइड में छोड़ सोच रहा है क्या मांगू, पूरी रात सोया नहीं, क्या मांगू, ये मांगू फिर कैंसिल, ये मांगू फिर कैंसिल, एक एक विचार करता मना कर, पूरी रात जागा। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई, बोले क्या चाहिए। बोले तुम नहीं आई तो मैं नहीं सो पाया, आओगी तब कब सो पाऊंगा। तू अभी आई नहीं हो, आने का वचन दियो तब से मेरी नींद गई, तो तुम जब आ जाओगी मुझे मेरी माला ही, तुम नारायण के पास रहो, हमारे नारायण ही ठीक है, क्योंकि जब जरूरत होगी नारायण भेज देंगे तुमको, हमें अकेला नहीं चाहिए। देखो बड़ी अच्छी बात, सही बता रहा है जा रहा है, वास्तव में चिंता में हम भरते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं इसी की धन डालने, और चिंता करने से हट कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कर्म कमंडल में नहीं लिखा है तो कैसे आएगा, भगवान चाहे तब आएगा। इसीलिए हम सूरदास जी ने एक बात कही है कि छोड़ो ये ज्ञान मार्ग, छोड़ो ये कर्म मार्ग, एक ही मार्ग है असली राज मार्ग, हाईवे जिसको, वो है भक्ति मार्ग। ओके, दूसरा छोड़ो इस देवताओं को, इस देवी को, इस बाबा को, एक ही है आराध्य भगवान ब्रजेश नंद नंदन गिरिवरधारी कृष्ण। और छोड़ो हमें ये चाहिए वो चाहिए न धन, हमें एक ही चाहिए, तब चरणे भक्ति मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसको अनन्य कहता है भगवान का, अनन्य इंद्रियंतो माम, अनन्य मतलब अन्य नहीं और कुछ नहीं, मतलब ज्ञान मार्ग नहीं, कर्म मार्ग केवल भक्ति मार्ग। दूसरा अनन्य शब्द का अर्थ, ये देवता ये देवी हो बाबा कुछ सब कुछ भगवान से निकला है, मूल में पानी डालो भगवान को, सब भगवान के, हम आदि देवा नाम गीता में वो कहते हैं, तो फिर केवल भगवान। ओके, मॉल नहीं बनाना है हमारे घर में, क्या बनाना है? मंदिर। हम लोग मॉल बना देते, ये बाबा बाबा ये देखिए, तो हम लोग मॉल में आए हैं कि मंदिर में आए? केवल एक ही, क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने? मत प्राण नाशस्तु सएव। क्या कहा मीरा ने? मेरो तो गिरिधर। फिर पद पूरा हो गया, दू जो है ना, और हम लोग को गिरिधर भी और भी सब। हम लोग अभी कहां अनन्य कहां है? देखो कहां हम माम खारी किसे में क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रज। माम के बाद एकम मतलब माम एव, माम एकम, इसका क्या अर्थ है? मेरी ही, मेरे अलावा, मतलब आप बता रहे हो कि भगवान के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, या खुद बता रहे हो इस दूसरे को मानकर, और उसकी मानने से उसकी हो जाती है। ये वेद कहता है, भगवत कहता है, कितने सारे श्लोक है, सब सार बात बताने की यह है, जिसको सूरदास जी ने कहा, मेरो मन पंछी अनंत कहां सुख पावे, उस भजन में वो कहते हैं, कमल नैन को छाड़ी महातम और देवन को ध्यावे। जिसकी आंखें कमल जैसी है, उस कमल नयन को छोड़कर किसी और देवी और देवता की जो पूजा करता है, कमल नैन को छाड़ी महातम और देवन को ध्यावे। कमल नयन को छोड़ के किसी और की पूजा करता है, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अरे अमृत की धारा समान ये गंगा बह रही है, उसको छोड़कर तू कुआं खोदने बैठा है? कृष्ण को छोड़कर किसी और को पकड़ रहा है, मतलब गंगा को छोड़कर कुआं खोद रहा है। जिन अंबुज जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो खीम करिल फल भावे। जिस भावरे ने, जिस मधुकर ने अंबुज रस कमल का रस चूसा हो, वो कभी करिल के नीम के पेड़ पर जा सकता है? नहीं। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो खीम करिल फल खावे। सूरदास प्रभु काम धे नुत्य जी छेरी कौन दुहावे। काम धेनु गाय को छोड़कर बकरी क्यों दो रहा है? देखो क्या कह रहे सूरदास जी, सूरदास प्रभु काम धे नुत्य जी छेरी। छेरी मतलब एक बिना दूध देने वाली, एक मरी हुई सुखी हुई कोई बकरी को लाकर दो रहा, पर काम धेनु को। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरे को अपना इष्ट आराध्य बनाता है तो भागवत रामायण उसने सुना नहीं, क्योंकि जिसको मान रहा है वो सब तो इनकी पूजा करने अवतार लेने इनकी प्रार्थना कर रहे हैं, सारे देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अवतार लो अवतार, और इनको छोड़कर उसको मान रहा है। वो कैसा काम कर रहा है? राम त्यजी है आर भजी है, राम को छोड़ रहा है दूसरे को। राम त्यजी है आन भजी है, गजराज त्यजी के गधा को चढ़ी है। अरे तुम गजराज को छोड़कर गधे पर क्यों बैठ रहे हो महाराज? जब श्याम सुंदर है बंसी बजाने वाले, ब्रह्मा जी जिनके चरणों में माथा टेकते हैं, गंगा जिनके चरणों से निकली है, सारा वेद उपनिषद पुराण महाजन विद्वान वेद सब जिसकी स्तुति करता है, और उस भगवान को छोड़कर कहां मन लगाया जाए? कल्प वृक्ष को छोड़ के किसी बबुल के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? हमारे कृष्ण कल्प वृक्ष भी नहीं है, कल्प वृक्ष तो आप, कल्प वृक्ष तो मांगने पर देता है और अवांछित वस्तु भी देता है, लेकिन कृष्ण हमारा जिसमें हित हो भला हो वही देता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप भूत मांगोगे तो भूत प्रकट हो जाएगा, मिठाई मांगोगे तो मिठाई, लेकिन भूत मांगने भूत, लेकिन कृष्ण के आगे मिठाई होगी लेकिन भूत, क्योंकि वो कल्प वृक्ष भी कल्प वृक्ष है। ये कृष्ण की करुणा है, इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, साधु संग कृष्ण सेवा छाड़ी अन्य देवी देवा। क्या करना चाहिए हम लोग? अन्याभिलाषिता शून्यम, जो रूप गोस्वामी ने कहा ना भक्ति, उसका सार रूप प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, छाड़ी अन्य अभिलाष, ज्ञान कर्म परिहरी सब छोड़कर एक ही काम करना है। क्या काम करना है? तो देखो उन्होंने लिखा है, धर्म कर्म दुख शोक जे बाथा के अन्य योग। छोड़ो इन सब को, कर्म को, धर्म को, दुख को, शोक को, एक ही काम करो। क्या करो? छाड़ी भजो गिरी वर धारी। सब कुछ छोड़ के एक ही व्यक्ति का भजन करने लायक है। किसका? जिसने अपनी छेनी कानी उंगली पर गिरिराज को धारण किया, उस गुरुधारी का भजन करो, बाकी सब छोड़ो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी, अन्य देव पूजक ध्यानी, इह लोके दुई परिहारी। छोड़ो ये सारे ज्ञानी ध्यानी कर्मियों का चक्कर, ये बाबा वो बाबा ये सब बोर्ड बोर्ड कुछ बताना नहीं है। हमारा एक ही काम है। क्या काम है? धर्म कर्म दुख शोक जे बाछा के यथा योग्य, छाड़ी छब भजो गिरिवर धारी। बस गिरिवर धारी का भजन करना है, बाकी सब बेकार है। और क्या है भजन कलयुग में? हमारे महाप्रभु ने कहा, कीर्तनीय सदा हरि। कलयुग में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। हरे कृष्णा हरे इस बंसी वाले का भजन करना है। श्रील प्रभुपाद की
आभार व्यक्त करेंगे विग्रह सुंदर कृष्ण प्रभु का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य जन्म के बारे में अवगत कराया। तो सभी भक्त का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे।